वहीं संजना की दर्द भरी आवाजें जल्द ही पूरे कमरे में गूंजने लगी थीं, और वो चाहकर भी अब सम्राट को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो इतना तो समझ चुकी थी कि इस घर में रहना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त राजवीर गहरी नजरों से अपनी बीवी के कपड़ों को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था और उन्हें ध्यान से सूंघ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा सनकी इस वक्त वहां मौजूद हो। उन कपड़ों को सूंघते सूंघते अचानक उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त वो सच में एक नंबर का सनकी और पागल सा लग रहा था। उन कपड़ों को देखते हुए वो बड़बड़ाते हुए बोला जा रहा था, मेरी नैना, मेरी प्यारी नैना, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। तुम्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शामिल कर लिया था, लेकिन फिर पहले तो अरमान सिंघानिया ने तुम्हें मुझसे अलग किया और अब उसकी बीवी ने। दोनों को जीने का कोई भी हक नहीं है। वो तुम्हें क्यों लेकर गई? कहीं ना कहीं उन कपड़ों की ओर देखते हुए राजवीर बड़ी बड़ी और अजीब तरीके से बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने उसकी वही बनाई हुई बीवी मौजूद हो। उन कपड़ों को अपने पास रखकर उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले से दृश्य आने लगे थे कि किस तरीके से उसने नैना को हासिल किया था। फिलहाल कुछ ही देर में उसने खुद को संभाला और तुरंत ही अपना फोन मिलाया। जैसे ही उसने किसी से कुछ जानकारी मांगी तो दूसरी तरफ से उसे बता दिया गया कि असल में आस्था की एक बहन थी, प्रियंका, जो कि नाइजीरिया गई हुई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ अचानक गायब हो गई थी। जैसे ही राजवीर ने यह सुना और प्रियंका का नाम सुना, उसकी आंखें कुछ पल के लिए चमक उठीं। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तो ये बात है, मेरी बीवी के साथ असल में अरमान सिंघानिया की साली का रिश्ता है। ये कहते हुए राजवीर सिर उठाकर हंसने लगा और बोला, तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुमसे। वहीं दूसरी ओर अरमान का इंतजार करते करते आस्था सुकून से सो रही थी, लेकिन अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो चुके थे। वो सीधा तहखाने वाले कमरे में जा पहुंचा, जहां पहले से ही आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और अविनाश उसका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त अबीर वहां मौजूद नहीं था। तभी अरमान ने गहरी नजरों से सबको देखा। हर बार की तरह ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा अपनी कुर्सी पर विराजमान होने जा रहा हो। आकाश और सुमित ने अरमान को उसके डार्क चेहरे के साथ देखते हुए कहा, हम नहीं जानते अरमान कि तुमने हमें सच बताकर सही किया या गलत, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों के सामने सारी बातें साफ हैं तो अब तुम ही बताओ हमें क्या करना है, क्योंकि प्रियंका को उनके चंगुल से छुड़ाने के बाद राजवीर और भी खतरनाक हो जाएगा। जैसे ही सम्राट को पता चलेगा कि इस वक्त आस्था कहाँ है, वो उसकी जान का प्यासा हो जाएगा, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वो तुम्हारा ही प्रतिरूप है। वो तुम्हारे जैसा ही सोचता है, तुम्हारे जैसा ही सनकी है। भले ही आस्था की मोहब्बत में तुम बदल चुके हो, लेकिन सम्राट की जिंदगी में तो कभी कोई लड़की आई ही नहीं थी। जैसे ही आकाश ने रहस्यमयी अंदाज में ये कहा, आहान तुरंत बोला, आस्था भाभी की जान बचाने के लिए हम अपनी जान से भी खेल जाएंगे, भाभी को कुछ नहीं होने देंगे। वहीं ध्रुव भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, अरमान भाई, हम 24 घंटे भाभी के साथ साई की तरह रहेंगे और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होने देंगे, लेकिन राजवीर या सम्राट को भाभी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ध्रुव और आहान ने मजबूती से ये कहा। तब अरमान ने गहरी नजरों से सबको देखा और बिना किसी इमोशन के बोला, राजवीर जिंदल को लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई है और वो जरूर एक बार फिर से मुझे आस्था के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा, जिस तरह उसने उस दिन क्लब में भी मुझे भड़काने की कोशिश की थी जब आस्था सम्राट से मिलने गई थी। उसने मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मेरी बीवी किसी और के साथ है, क्योंकि उसे मेरी कमजोरी के बारे में अच्छी तरह से पता है और आस्था मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अब मुझे अपने दुश्मन को उसी के खेल में मात देनी होगी। और रही बात सम्राट की, तो मैं जानता हूं कि अब उससे मिलने का वक्त आ चुका है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मुझे उससे मिलने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे गुरुजी खुद मुझसे मिलने का बंदोबस्त जरूर करेंगे। ये कहते हुए अरमान रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराया और सभी लोगों की ओर बारी बारी से देखकर वहां से बाहर निकल गया। वहीं अविनाश ने तुरंत अरमान को पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, अरमान रुको, देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम खुलकर मुझे कुछ बताना भी नहीं चाहते हो, ठीक है, लेकिन देखो अरमान, मैं अपनी गोरी की आंखों में बिल्कुल भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि डेविल किंग बनने के बाद तुम्हारे कितने दुश्मन पैदा हो गए हैं, और हो सकता है कि अभी तो केवल खुलकर राजवीर और सम्राट ही सामने आए हों। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे न जाने कितने ही छुपे हुए दुश्मन हों जिनके बारे में तुम्हें भी कोई अंदाजा ना हो। देखो अरमान, मैं सीधे तरीके से तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी गोरी पर इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? और वैसे भी हमें इंडिया आए बहुत वक्त हो चुका है। हम तो यहाँ अपनी गोरी को सरप्राइज देने के लिए आए थे,
लेकिन तुम्हारी याददाश्त जाते हुए देखकर हमें ही यहाँ एक अलग तरह का सरप्राइज मिल चुका था। लेकिन फिलहाल जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। और ये बात भी तुम इस समय अच्छी तरह जानते हो कि मेरी गोरी को तुमसे कितना ज्यादा लगाव है और वो तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती है। एक और बात बताऊं तुम्हें अरमान सिंघानिया, अगर मेरी गोरी तुम्हें प्यार नहीं करती तो मैं कभी एक पल के लिए भी उसे तुम्हारे जैसे इंसान की जिंदगी में नहीं रहने देता, जिसकी जिंदगी में खून खराबा और दुश्मनों के अलावा कुछ भी नहीं है। अविनाश की बातों में एक भाई की चिंता साफ झलक रही थी। और तभी अरमान जैसे जैसे अविनाश की एक एक बात सुनता जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी और इसी वक्त वो बंदूक निकालकर अविनाश का भेजा उड़ा देगा। तभी आकाश, सुमित और ध्रुव वहां मौजूद तीनों ने ही अरमान की सिचुएशन पूरी तरह से भांप ली थी। आखिरकार अविनाश उसी के सामने खड़ा होकर ये कह रहा था कि अगर उसकी बहन उसे प्यार नहीं करती तो वो उसे कभी भी अपनी बहन के साथ नहीं रहने देता। ये बात अरमान के दिल को पूरी तरह से जख्मी कर रही थी। तभी जल्दी से आहान और ध्रुव आगे आए और अविनाश को देखकर बोले, अविनाश भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान भाई आस्था भाभी को कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तो फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं? और वैसे भी अरमान भाई अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, वो भाभी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनके अलावा उनकी जिंदगी में अब कोई भी नहीं है, इसलिए प्लीज आप इस तरह की बातें मत कहिए। जैसे ही आहान ने ये कहा, अविनाश उसकी ओर देखकर बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग इमोशनल हो और तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे भाई के लिए है, लेकिन तुम्हें मेरी भी तो बात समझनी चाहिए। मैं भी एक बहन का भाई हूं और मैंने अपनी बहन को बहुत ही मन्नत और मुरादों के बाद पाया है, वरना तो मैं उसे पाने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुका था। लेकिन मेरी बहन की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अरमान की यादें जाने के बाद जिस तरह से मैंने उसे तड़पते हुए देखा है, ये मेरा दिल ही जानता है, मैं अपनी बहन को फिर से तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ।
सम्राट, राजवीर, ये जो भी लोग हैं, जल्द से जल्द इनका चैप्टर क्लोज करो, क्योंकि मुझे जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। दादाजी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। जैसे ही अविनाश ने गंभीर अंदाज में ये कहा, वो बिना कुछ और बोले वहां से मुड़कर सीधा चला गया। वहीं अरमान की आंखों के साथ साथ उसका चेहरा भी ऐसा हो गया था मानो बिल्कुल काला पड़ चुका हो। उसके अंदर से बड़े ही खतरनाक वाइब्स आने लगे थे, जो कि पहले वाले अरमान में आया करते थे। अब तो आहान के हाथ अपने आप ही कांपने लगे थे, वहीं ध्रुव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने उसी वक्त अरमान को नहीं संभाला तो जरूर अरमान अपने गुस्से और नफरत में जाकर अविनाश को बहुत ही खतरनाक मौत दे सकता है। आखिरकार बातों बातों में अविनाश ने उसे अपनी बहन से अलग करने की बात कह दी थी, और अरमान तो ये बात सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसे आस्था से दूर होने के लिए कहे। इस वक्त उसके अंदर से बेहद खतरनाक वाइब्स निकल रही थी। इतना ही नहीं, आहान और ध्रुव दो कदम पीछे होकर खड़े हो गए थे। उन्होंने घबराई हुई नज़रों से आकाश और सुमित की ओर देखा, क्योंकि अरमान को देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर अभी किसी ने उसे नहीं रोका तो वो उसी वक्त जाकर अविनाश की जान ले सकता है। अब आकाश और सुमित अब सीधे अरमान के आसपास खड़े होकर बोले, अरमान, तुम्हें अविनाश की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। तुम तो जानते ही हो, वो आस्था का बड़ा भाई है और एक भाई को अपनी बहन की फ़िक्र होती ही है, इसलिए तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि अभी अविनाश की बातों को लेकर इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग में किस तरह के सवाल चल रहे हैं, लेकिन अरमान, तुम्हें बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। तुम्हें अविनाश को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, वो आस्था का भाई है और आस्था अपने भाई को बहुत प्यार करती है। शांत हो जाओ अरमान, और वैसे भी एक भाई के लिए उसकी बहन की खुशियाँ उससे ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। जिस तरीके से तुम्हारी यादें चली गई थीं, उस दौरान आस्था की हालत हमने भी देखी है। हम सबसे उसके आंसू और उसका दर्द छुपा हुआ नहीं था अरमान, और अविनाश जो कह रहा था वो बिल्कुल गलत भी नहीं कह रहा था, इसलिए तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, उसकी तरफ देखना बंद करो अरमान। आकाश ने ये बात थोड़ी तेज आवाज में कही थी। अब तो अरमान तुरंत ही मुड़कर आकाश और सुमित को देखने लगा था, और एक पल के लिए आकाश और सुमित दोनों के शरीर में झुनझुनी सी पैदा हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई हो। उस वक्त अरमान बेहद खतरनाक लग रहा था, सभी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि अरमान में से बिल्कुल पहले वाली वाइब्स आ रही थी। वे सोच रहे थे कि अगर अरमान की यादें वापस आ गई हैं तो वो नरम दिल और बदला हुआ अरमान कहाँ गया, अभी तक अरमान को देखकर इस तरह की खतरनाक वाइब्स क्यों आ रही थीं। लेकिन फिलहाल सुमित ने खुद को थोड़ा शांत किया और अपने आप पर कंट्रोल करते हुए अरमान को देखते हुए कहा, अरमान, शांत हो जाओ, तुम इस तरीके से अपना होश नहीं खो सकते। अभी तुम्हारी यादें वापस आई हैं, शायद पूरी तरह से रिकवर होने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है। लेकिन आस्था के बारे में सोचो, अगर आस्था को बिल्कुल भी भनक लग गई कि तुम उसके भाई के बारे में क्या सोच रहे थे, तो उसे बहुत बुरा लग सकता है। तुम सुन रहे हो ना हमारी बात? तभी अरमान ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांसें ली और फिर तुरंत सुमित, आकाश, ध्रुव और आहान को देखकर बोला, क्या हो क्या है तुम लोगों को? मैंने कब अविनाश को मौत देने के बारे में सोचा? तुम लोग कैसी बातें बनाई जा रहे हो? हाँ, वो भाई है, वो मेरी आफत का भाई है,
और उसकी फिक्र करना उसका हक है। डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर अरमान ने बारी बारी से सबको देखा और तुरंत ही वहां से बाहर जाने लगा। वहीं अरमान के जाने के बाद चारों ने एक दूसरे की शक्ल देखी। ध्रुव धीरे से बोला, ये क्या था? अरमान भाई ने अपने मुंह से तो ये बोल दिया कि वो अविनाश को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर ही इस बात का साथ नहीं दे रहा था। इतनी खतरनाक वाइब्स अरमान भाई में से क्यों आ रही थी? आखिर चल क्या रहा है? तभी आकाश और सुमित बोले, तुम तो जानते ही हो कि उसकी यादें अभी अभी लौटी हैं, और अचानक से अविनाश ने आस्था से उसे दूर करने की बात कह दी, तो शायद इसीलिए उसकी बॉडी और दिमाग ने इस तरह रिएक्ट किया। शांत हो जाओ, अरमान बिल्कुल ठीक है, और देखो उसने अपने मुंह से कहा है ना कि वो अविनाश को कुछ नहीं करेगा, तो तुम लोगों को भी शांत हो जाना चाहिए। और फिलहाल हमें अपने घर की लेडीज की सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। शायद तुम लोग भूल रहे हो कि डार्क विला जाने में आस्था के साथ साथ रौनक, राधिका और एंजल भी मौजूद थी। वंशिका भले ही डार्क विला नहीं गई थी, लेकिन वो क्लब में तो साथ गई थी ना, और वहां पर सम्राट ने वंशिका को जरूर देखा होगा। इसलिए हमें अपने घर की सभी लेडीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन सनकियों का कुछ भी भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं सुमित ने ये बात बहुत गहराई से कही थी। वहीं ध्रुव तुरंत बोला, मैं तो अब वंशिका को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, 24 घंटे उसके साथ रहूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास, कहीं वो उठकर मुझे ही ढूंढने न लग जाए। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों, और सुनते रहिए पॉकेट FM।